ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्या ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो आज के इस 7 जून के डिपार्टमेंटल मीटिंग में आप सबका स्वागत है। बोलो।
Explain the story about Bali Maharaj to us in two days. Prabhu, my doubt is that even though he was a demon, right? He came from an Asura family. He conquered the three worlds and everything. But still, why is he considered a great devotee? I mean, why is he considered as a great devotee? I still didn't get that point.
Rakshas होने पर भी, देवताओं के खिलाफ काम करने पर भी वो महान डिवोटी क्यों माने जाते हैं, है ना? यही तो मेन बात है। भगवान बताना चाहते हैं हमको कि कोई भी चीज़ भक्ति में बाधा नहीं बन सकती। चाहे आपका जन्म राक्षस कुल में हो गया हो, या आप गरीब हो, या आप राक्षस पक्ष में हो, कोई भी चीज़, कोई भी भौतिक चीज़ हो जो हमारे समझ में भी नहीं आती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई भी भक्ति के विपरीत चीज़ भी आपको दिखाई पड़ती होगी, वो भक्ति के बीच में नहीं आ सकती। तो उसमें से एक है राक्षस कुल में जन्म होना। तो प्रहलाद भी राक्षस के कुल में जन्मा था ना, फिर भी वो भक्ति कर पाया। लेकिन बलि ने तो देवताओं के विरुद्ध युद्ध भी किया, देवताओं को कई बार परास्त किया, देवताओं का राज्य खाली कर दिया, देवताओं को भगा दिया। एक बार मर गया था, फिर भी शुक्राचार्य ने उसको जीवित किया, और जीवित करने के बाद भी उसने ब्राह्मणों को प्रसन्न किया, यज्ञ किया, फिर वही देवताओं पर आक्रमण किया, और फिर उसको इंद्र बनने की भी इच्छा थी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी उसके अंदर ना प्रहलाद के द्वारा दिया गया भक्ति का बीज था, द सीड ऑफ डिवोशन गिवन बाय प्रहलाद, और वो अच्छी तरह से पल रहा था। उसके कॉन्शियसनेस में क्या चल रहा है उसका प्रमाण कब मिलता है हमको? जब भगवान ने उसका टेस्ट किया। तब तक आपके मन में क्या चल रहा है कोई किसी को समझ में नहीं आएगा। जब कोई परीक्षा होगी आपकी, कोई संकट आएगा आपके ऊपर, कोई भयंकर हमला होगा आपके ऊपर, तो आपके अंदर क्या है भावना चेतना वो तुरंत प्रकट हो जाएगी। इसलिए ऐसा कहा गया है कि यू आर व्हेन यू आर पुट इनटू स्ट्रेस, आपकी सही पहचान वो है जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपकी सही पहचान होती है। अदरवाइज सब लोग अच्छे रहते हैं, उसमें क्या है? जैसे ही कोई स्ट्रेस आपको दिया, कोई क्वेश्चन दिया, कोई संकट आया, तो आपका रियल यू बाहर आता है। तो वैसे सब कुछ ठीक था, राक्षस था, वो सब राक्षस के कुल का था, राक्षस सैनिक थे, राक्षस पत्नी है, राक्षस बच्चे हैं, राक्षसों का गुरु भी है, तो राक्षस ही है। लेकिन जैसे ही भगवान ने दर्शन दिया तो कैसे उठा वो तुरंत? कहते हैं कि वो यज्ञ में खड़ा हो गया तुरंत, छोड़ के यज्ञ, और भगवान को वंदन किया उन्होंने, और इतना उसका जो है ना हृदय प्रभावित हो गया, प्रकाशित हो गया एकदम, वाज़ सो एनलाइटेंड टू सी द लॉर्ड। जनरली क्या होता है ना, दुर्योधन ने भगवान को देखा तो दुर्योधन के मन में शत्रुता जागृत हो गई, हाँ, एनिमिटी टुक बर्थ इन द हार्ट ऑफ दुर्योधन। राक्षसों का यही स्वभाव होता है, भगवान मिलने पर भी उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उनका दुश्मनी दिखाई पड़ेगा आपको। लेकिन जैसे ही बलि महाराज ने भगवान को देखा, सारे भक्ति उसकी उमड़ आई ऊपर, और सबसे बड़ी कठोर परीक्षा थी उसकी उस समय। कि उसका राज्य भी छीनने वाला था, उसकी जो इज्जत थी अपने भाइयों के, बहनों के, वाइफ के, सैनिकों के, परिवार के जनों के सामने, वो सब नष्ट होने वाली थी। और हो गई, मतलब कुचल गई वो। इट वॉज क्रश्ड। थोड़ा सा नहीं अपमान हुआ उसका, बहुत भयंकर अपमान हुआ। उनके शत्रुओं के सामने भी उनको अपमान किया गया। देवता लोग खड़े हैं, सब लोग अच्छा ड्रामा देख रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। देखो देखो अपने सबसे भयंकर शत्रु को भगवान ने कैसे उल्लू बनाया। वो हंस रहे हैं, ऊपर से उनके सामने उनको सब कुछ गंवा कर भिक्षुक बनना पड़ा। उसके बाद में जब वो इतना बड़ा राजा था, वो भिक्षुक बन गया ना, शून्य हो गया उसका प्रॉपर्टी, तो गरुड़ ने उसको वरुण पाश में बांधा, बंदी बना दिया उसको और घसीटा उसको। अभी जब घसीटे जा रहे हो ना आप, तो आपके सब परिवार के लोग देख रहे हैं, आपकी वाइफ देख रही है, आपके सैनिक देख रहे हैं, आपके मंत्री देख रहे हैं। आज तक आपका विजय देखा उन्होंने, आज वो देख रहे हैं और शत्रु भी देख रहे हैं। और सबसे बड़ा शत्रु जो है, जो भगवान के रूप में आए हैं, उनके सामने इतना अपमान हो रहा है उनका। लेकिन आचार्यों ने ऐसा वर्णन दिया है कि उसके हृदय में ब्लिस, एक्सटसी, अति आनंद का अनुभव हो रहा था उसको। जब उसका अति भयंकर अपमान हो रहा था, तब उसको अंदर से आत्मस्तर पे बहुत दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा था उसको। इसलिए वो महान है। और उसने केवल ऐसा नहीं किया कि क्या करें भगवान, अभी आपने सब तो ले लिया, अभी सोचा उसने कि तीसरा कदम देना है मुझे, तो अपने अहम को भगवान के चरणों में रख दिया उसने, अपने स्वत्व को, अपने अस्तित्व को भगवान के चरणों में रख दिया उसने। इसलिए वो आत्मनिवेदन इस भक्ति के अंग का आचार्य है। बाकी सब लोग श्रवण, कीर्तन, स्मरण, इसके आचार्य हैं। और सबसे लास्ट जो सबसे पावरफुल अंग है भक्ति का, वो नवधा भक्ति में आत्मनिवेदनम है। मतलब उसमें सब कुछ आ गया, कान भी आ गए, जीवा भी आ गए, हाथ भी आ गए, पैर आ गए, बुद्धि आ गए, मन आ गया, एवरीथिंग, सबका अस्तित्व आ गया, अहंकार भी आ गया, सब आ गया उसके अंदर, एवरीथिंग, कुछ बचा ही नहीं उसके अंदर। और वो उसने ऐसे ना सहजता से भगवान के लिए किया उसने। उसके सबसे बड़े और कसौटी थी उसकी, जिस गुरु ने उसको जिंदगी भर संभाला, ऐश्वर्य दिया, शक्ति दिया, बल दिया, तेज दिया, देवताओं के खिलाफ विजय प्राप्त करा दिया, यज्ञ कराए, क्या क्या करा दिए, कितनी उसके अंदर आध्यात्मिक श्रद्धा होगी, निष्ठा कितनी उसकी होगी, कि वो निष्ठा इतनी थी भगवान के ऊपर उसको, कि अपने गुरु को भी आदेश से तोड़ दिया। ये समझते हुए पूरी तरह से, देखो कितना बाका प्रसंग है, ऐसा नहीं कि घर में उसको बताया गया कि कल आपका ये परीक्षा होगा, आपको अभी तैयारी करो, वो गुरु जी को आज्ञा पालन करना है कि नहीं करना है, कल बहुत बाका प्रसंग आएगा, ऐसा नहीं है। सब कुछ ऑन द स्पॉट हो रहा है। वो होता ना, कुछ ऐसे पेपर देते हैं, बाद में वाइवा एग्जाम लेते हैं, वाइवा में क्या पूछेगा कि उसको मालूम नहीं रहते हैं, ऑन द स्पॉट यू हैव टू आंसर। तो ऑन द स्पॉट उसको बताया, गुरु बोल रहे इसको कुछ दोगे ना तो मेरा शाप है तुमको, तुम सब कुछ लुट जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, तुम भिखारी बन जाओगे। तो भी उसी समय उसने विचार किया कि नहीं, गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य को भगवान से मिलाए, भगवान सामने खड़े हैं, उसको दान करने का मौका मिल रहा है, तो गुरु जी का कर्तव्य है कि मुझे प्रेरणा दे उसके अंदर, मुझे एनकरेज करें। लेकिन ये मुझे उस समय पे मना कर रहे हैं, तो इस समय पे मुझे इनकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए, ये निर्णय भी उन्होंने उसी समय लिया। और ये निर्णय लेने की क्षमता, शुद्धि, डिटर्मिनेशन, निश्चय सब उसके अंदर था। इतना बड़ा निवेदन कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि इतने सालों से कमाया हुआ धन था उसका, प्रॉपर्टी इतना 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुका था, वो 100वां यज्ञ करता कर रहा था, अभी इंद्र बनने ही वाला था, इंद्र क्या भिखारी बन गया, वो 100 यज्ञ का फल भी खत्म हो गया उधर। इमेजिन, 100 यज्ञ का फल जीरो हो गया, वो खुद भी जीरो हो गया, अपमान हो गया, मित्रों के सामने, परिवार के सामने, शत्रु के सामने, कहीं का नहीं रह गया वो, फिर भी अपने वचन से नहीं हिला, सत्य वचन से ढला नहीं वो, उसका गौरव वही है। कितने हमारे में से लोग हैं जो इतना निश्चय से सत्य वचन से टिके रहेंगे, बताओ। बहुत कुछ करेंगे लेकिन एंड में फंस जाएंगे। छोड़ देंगे। इसलिए भगवान ने बलि का कितना गौरव किया है, ऐसा वरदान शायद भगवान ने किसी को दिया नहीं होगा आज तक। वो भगवान का जो वरदान है ना, वो भी एक प्रमाण है उसका कि कितने श्रेष्ठ भक्त थे उसके। हम लोग बचपन से वो कथा सुनते आ रहे ना कि बलि ने दो कदम दिया, तीसरा कदम नहीं दे पाया, तो भगवान ने सर पे पांव रखा, उसको नरक में भेज दिया, कथा खत्म, कथा हमारी समाप्त हो गई वहाँ पर। लेकिन असली गौरव की जो कथा है ना, वहाँ शुरू होती है। भगवान उससे इतने प्रसन्न थे कि ब्रह्मा जी भी बोले, भगवान अभी बहुत दंड मिला उसको, आपका कार्य पूरा भी हो गया, आपने देवताओं के लिए जो करना था वो कर दिया, उनको राज्य वापस लौटा दिया, अभी वो बस करो इसको। मतलब जो देवताओं के शत्रु हैं बलि, उनकी दंड को देखकर ब्रह्मा को भी लग रहा है कि बस हो गया अभी, फिर भी आनंदित था वो। कई वर्णन है, अगर रो रहा है वो, तकलीफ हो रही है उसको बहुत, डिप्रेशन में जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो भगवान ने फिर लाइन लगा दी वरदानों की। पहले क्या बोला, मैं आपको सुतल लोक भेजूंगा, तो बाहर से क्या दिखता है, अरे तो सुतल लोक भेजेगा उसको, नरक में भेज रहे हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि वो सुतल लोक को मैंने इतना ऐश्वर्य संपन्न बना दिया है कि इंद्र का राज्य भी उसके सामने कुछ नहीं होगा। उधर ही पहला इंद्र का क्लीन बोल्ड कर दिया, इंद्र को अपना राज्य लिया उससे और वापस कर दिया, ठीक है ना। इंद्र कितना खुश हो गया, जो खो गया था सब कुछ वापस मिल गया। और वो सुन रहा है अभी इंद्र कि तुम्हें ऐसा राज्य दूंगा कि इंद्र की अमरावती से भी बहुत श्रेष्ठ होगा वो। और कई जगह वर्णन किया है कि इतना राज्य तुम्हारा ऐश्वर्य संपन्न होगा कि शायद इंद्र ही तुम्हारी ईर्ष्या करेगा, इंद्र ही पहले आक्रमण करेगा उसको द्वेष की वजह से, तो मैं आपको पहले से ही मेरा चक्र भेज रहा हूँ तुम्हारे पास ताकि तुमको कष्ट नहीं करना पड़े, वही अपना रक्षा करता रहेगा। उसके बाद में क्या बोला कि तुम जितना समय इस पे राज्य करोगे उतना समय तक तुम हमेशा आनंदी रहोगे, राक्षस कुल के परिवार के लोगों के साथ संग करने से उसका दुष्परिणाम तुम्हारे चेतना पर नहीं होगा, योर कॉन्शियसनेस विल नॉट बी पॉल्यूटेड बाय डिमोनियक फैमिली एसोसिएशन। तुम्हारे राज्य में तुम्हारे साथ जो भी रहेंगे वो कभी थकेंगे नहीं, किसी भी चीज थकेंगे नहीं, कभी टायर्ड ही नहीं होंगे, थकना मना है, हमेशा उत्साही रहेंगे, बुढ़ापा बीमारी के कष्ट से मुक्त रहेंगे। और तुम जब इतना हजारों साल उस सुतल लोक में रहोगे, तुम्हारा कालावधि समाप्त हो जाएगा, तब दूसरा मनु आएगा, तब तुम इंद्र बनोगे। मतलब वो भी इच्छा पूरा किया। प्रहलाद को बोला, तुम यहां पर क्या कर रहे हो, चलो हमारे साथ, मैं भी तुम्हारे द्वार सुतल लोक में आऊंगा, मैं आऊंगा और तुम्हारे साथ में रहूंगा, ऐसा नहीं बोला, तुम्हारे साथ में एक महल बना के तुम्हारे राज्य में रहूंगा, नहीं, तुम्हारे दरबार में द्वारपाल बन के रहूंगा, आई विल बिकम गेट कीपर। इतना वरदान दिया है एक के बाद एक, मतलब फुल प्रूफ बना दिया उन्होंने भगवान ने। कोई देवताओं का काम नहीं आने का, कोई इसे किसका आने का काम नहीं, कोई शेयरिंग नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई थकान नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ऐसा वरदान दिया। और तुम मेरे भक्ति में बने रहोगे, तुम्हारी भक्ति में इतना भी अंतर नहीं पड़ेगा, गारंटी है तुम्हारे लिए। मतलब पूरा ना उसको ना भौतिक वर्ल्ड से इम्यून बना दिया, मटेरियल वर्ल्ड इम्यून कर दिया उसको, किधर भी रहो तुम्हारे ऊपर कुछ परिणाम नहीं होगा। तो भगवान भी अभी कैसा ना, प्रहलाद भी देख रहे हैं, अरे प्रहलाद नाचने लगे, बताया मैंने आपको उस दिन, प्रहलाद डांस करने लगे, तो भगवान उसको पूछते, अरे तुम क्यों नाच रहे हो, बोले मेरा पोता मेरे मुझसे बाजी मार गया। बोले कैसे, जब तुमने मेरे पर कृपा की थी तो तुमने मुझे गोद पे बिठाया था और चाटा था, हाथ से सवारा था, पैर रखा था क्या सर पे मेरे, तुमने मेरे पोते के ऊपर पैर रख दिया, इतनी बड़ा कृपा हो रही है उसके ऊपर, इसलिए मैं नाच रहा हूँ। फिर जब भगवान ऐलान करते ना कि मैं जाऊँगा तुम्हारे साथ द्वारपाल बनकर तुम्हारे पास रहूँगा, तो तुरंत प्रहलाद ने भी डिसीजन लिया, मैं भी जा रहा हूँ, तुरंत डिसीजन ले लिया। तो जब प्रहलाद का, अभी मैं आपको बताता हूँ वो कहानी क्या है। प्रहलाद जब भगवान ने अवतार लिया ना नरसिंह भगवान का, तो प्रहलाद को बहुत दुख हुआ कि अभी भगवान जा रहे हैं, लीला किया इतना सब चमत्कार किया और जा रहे हैं, तो बड़ा दुख हुआ उनको, बोले भगवान आप जा रहे हो, मैं रह नहीं पाऊंगा आपके बिना। तो तुरंत भगवान ने अपने हृदय से अपनी मूर्ति प्रकट की, उग्र नरसिम्हा की, छोटी सी मूर्ति जिसमें प्रहलाद गोद में है, दो हाथ से पकड़े हैं, दो हाथ में पेट फाड़ा है, दो हाथ से आंतों की माला पहनी हुई है, और बाकी दो हाथ में दो चीज़ें हैं, शंख और पद्म, एक पैर पे खड़े हैं, पैर के आसन पे हिरण्यकशिपु को रखा है, ऐसे एक छोटा विग्रह पैदा किया उन्होंने और दे दिया प्रहलाद को, बोला इसी की आप पूजा करना, इसके रूप में मैं हमेशा आपके साथ में रहूँगा। तो वो मूर्ति भी प्रहलाद वहाँ पर लेके आए थे, जब भी उनका घसीटने का काम चल रहा था ना, पैर रखने का काम हुआ ना, तभी प्रहलाद जी प्रकट हुए वहाँ पर अपने पोते का गौरव देखने के लिए। वो देख रहे हैं उसको घसीटा जा रहा है, लेकिन वो ब्लिस में है एकदम, तो बड़ा गर्व हुआ उनको, कितनी बड़ी बात है। और जब पैर रखा तो बहुत आनंदी हो गए। तो जैसे भगवान ने वो बोला ना कि आप मैं जा रहा हूँ, तो उन्होंने तुरंत मूर्ति किसी को दे दी, बोले एक संभालो इस मूर्ति को, इसकी पूजा अर्चना करो, मैं जा रहा हूँ, साक्षात इनका संग मिलेगा तो मूर्ति करके क्या करूँगा मैं, चले गए वो। और बलि महाराज के दरबार के द्वारपाल के रूप में दोनों बैठे, प्रहलाद भी बैठे और भगवान भी बैठे, और द्वारपाल द्वार में बैठकर दोनों ने हमेशा बलि के गौरव का चर्चा किया और भक्तों के चरित्र का चर्चा किया। भगवान को सबसे बड़ा आनंद उसमें आता है, अपने भक्तों के चरित्र का वर्णन करने के लिए। तो प्रहलाद ने कुछ बोले तो फिर उन्होंने कुछ बोला, फिर उन्होंने ऐसे समय बिताया उन्होंने। तो वो जो मूर्ति है ना, जिसको उन्होंने दी, यथावकाश कालांतर में वो मूर्ति दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम में एक जगह पर आई, और वहाँ पर हमारे विजयेंद्र तीर्थ गोस्वामी थे, विजयेंद्र तीर्थ मध्वाचार्य के संप्रदाय में। तो वो एक दिन अपनी, ये अभी अभी की कहानी है, कलयुग में 8th century की कहानी है, ये 8वीं सदी की कहानी है। तो उसमें वो उनका त्रिवेंद्रम के समुद्र किनारे में मठ था और शुद्ध भक्त थे वो। हमारे ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय में एक ब्रांच निकलता है राजेंद्र तीर्थ करके, वो व्यासदेव के बाद में, मध्वाचार्य के बाद में वो एक ब्रांच निकलती है, सब तीर्थ है उसके अंदर, राजेंद्र तीर्थ, सुकृतेंद्र तीर्थ, समयेंद्र तीर्थ, ऐसे बहुत सारे तीर्थ हैं उसके अंदर, लक्ष्मीपति तीर्थ बहुत सारे हैं। उसमें से जो 8वीं सदी में थे उस समय, उनका नाम था विजयेंद्र तीर्थ, उनका आश्रम था, बड़े शुद्ध भक्त थे वो, समुद्र किनारे रहते थे। तो एक दिन वो गुजर रहे थे, तो एक कुएं में, जब कुएं के पास में आए तो एक स्नेक था कुएं पर बैठा हुआ ऐसा, और वो ऐसे कुछ कर रहा था, इशारे कर रहा था मानो कि कुछ है यहाँ पर। तो स्वामी जी बड़े दिव्य भक्त थे, तो समझ गए कि कुछ कुछ इशारा कर रहा है वो, कुछ बता रहा है, कुछ भगवान का दिव्य चमत्कार होने वाला है। तो उसने शिष्यों को बोला कि इस कुएं में क्या है ढूंढो। तो कुएं में उनको वो मूर्ति मिली नरसिंह भगवान की, जो प्रहलाद द्वारा पूजित थी। तो तुरंत उन्होंने ली भगवान की मूर्ति, इतनी दिव्य मूर्ति प्रकट हुई, तो ले गए अपने आश्रम में रखा। जैसे आश्रम में रखा, तुरंत झगड़े चालू हो गए, आश्रम में आग लगना चालू हो गया, ये गलत वो गलत, कुछ गलती करे इधर स्पार्क आने लगा, इधर चिंगारी उड़ने लगी। तो बोले भगवान क्या मैं आपकी सेवा में कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे बताइए क्या करना है। फिर कुछ जवाब नहीं मिला, तो वापस सेवा शुरू किया, वापस वही जितना दिन सेवा किया उतना दिन रोज आंधी तूफान, अग्नि, चिंगारियाँ, झगड़े ये सब हो रहे हैं। तो एक दिन ना स्वामी जी बड़े परेशान हो गए, बोले मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, तो मैं ना अभी आपको लेकर समुद्र में जाऊंगा और खुद भी कूद कर आत्महत्या कर लूँगा और आपको भी वहाँ विसर्जन कर लूँगा, क्योंकि मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। उस समय नरसिंह भगवान उनसे बोले कि ये सब इसलिए हो रहा है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे ऊपर ले जाओ, मैंगलोर में ले जाओ, वहाँ पर मुझे रहना है। बताया शंभवी नदी है, उसके किनारे में रहना है मुझे, उधर चले के जाओ, उसका नाम मूलिका क्षेत्र है। तो फिर तुरंत वो निकले, समझ गए कि भगवान की यहाँ रहने की इच्छा नहीं है, इसलिए वो सिग्नल दे रहे, तो इसलिए वो सर पे लेकर भगवान को निकले। रोज जाते थे और दिन भर चलते थे और रात को एक जगह रुकते थे, विश्राम करके अगले दिन सुबह निकलते थे, भोग लगाना, पूजा अर्चा सब करते थे। तो करते 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 ना वो हमारे गाँव तक पहुँचे, हमारा गाँव मुल्की मूलिका क्षेत्र में पहुँचे, और अभी 12 किलोमीटर दूर था वो स्थान जहाँ पहुँचना था। तो उधर एक राजा के पास रात को पहुंचे वो शाम को समय, तो राजा जैन राजा था। हमारे गांव में बहुत जैन राजा है, बहुत जैन राजा की मूर्तियां, गोमटेश्वर बहुत सारा है, कई जगह पर है। तो जैन राजा को उसने बोला कि हमको ज़रा आसरा दे दो। तो वो थोड़ा देर बोला ठीक है सोचता हूँ मैं। तो वो सोच कर क्या बोला कि नहीं नहीं हम आपको जानते नहीं हैं, पता नहीं आप कहाँ से आए क्या है मालूम नहीं है, आप नहीं रह सकते, आप जाओ। तो फिर उसने बोला कम से कम हमको मशाल दे दो, आप रात को जाने को बोल रहे, रात को हम चलते नहीं हैं लेकिन आप बोल रहे जाने दो, तो आप मशाल दे दो मशाल। तो मशाल देने को भी इनकार कर दिया उसने। तो फिर ना स्वामी जी को बड़ा बुरा लगा, उन्होंने कहा कि अरे इतना ख़राब राजा ये, मैं बता रहा हूँ भगवान को लेके आया हूँ, मुझे जाना है, आसरा दो, आसरा देने को मना कर दिया, मशाल देने को मना कर दिया, कितना पापी राजा है, मुझे यहाँ पर एक मिनट रहना नहीं है, मुझे तुरंत चलना है। तो अंधेरे में चलने लगे, जैसे ही अंधेरे में चलने लगे ना, धाड़ करके बिजली गिरी राजा के महल पर और पूरा महल ऐसा आग लग गई उसको, और एक बड़ी मशाल पैदा हो गई, यहाँ तक कि 50 किलोमीटर तक उसका प्रकाश गिरने लगा, और वो जगह 12 किलोमीटर थी। तो उसके प्रकाश में फटाफट स्वामी जी मूर्ति को लेकर पहुंच गए, मशाल देने को मना कर दिया, भगवान ने उसका महल जलाकर मशाल पैदा किया और वो प्रकाश दिलाया और उधर ही से निकल गए वो, और वहाँ मुल्की में पहुंच गए। तो जहाँ पर रखते वहाँ पर आग लगती, यू आर स्लीपिंग, तो जहाँ रखा वहाँ आग लगने लगी। तो उनको बड़ा आश्चर्य हो गया, करते 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 फिर एक जगह पर आए ना, वहाँ पर रखे तो फिर आग लगना बंद हो गया, और वही जगह पर आज वो मूर्ति है। मुल्की, मुलिका क्षेत्र, वेंकटरमणा मंदिर। फिर वो ट्राई करते रहे उनको यहाँ रखने के लिए, फिर वहाँ जब पहुँचे जिस जगह पर उनको बैठना था, आग लगना बंद हो गया, फिर उनका प्रतिष्ठापना किया गया। फिर हाँ बिल्कुल, हर टाइम जाते हैं। नहीं 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 ऐसा है, 1000 साल पहले की चले। ओके, उसकी भी कहानी है। तो महाराज जी पहुँचे तो उनको पता चला अपना महल जल गया, और उसमें वो महाराज चले गए, पहुँच गए, तो उसको फिर उसने सोचा कि हम रिपेयरिंग करेंगे उसका। पूरा लकड़ी का महल होता ना उस समय, तो जितना लकड़ी बाहर से लेके आता ना, जैसे ही उस राज्य की सीमा में आता था, वो लकड़ी ही कोयला बन जाती थी। आपने अच्छा लकड़ी लाया है, लेकिन लकड़ी हाथ में लेकर अंदर प्रवेश किया अपने राज्य की सीमा के अंदर, तो फिर वो कोयला, कितना टनों से टन लेके आया लकड़ी, सब कोयला बन गया। तो फिर अपने उसने गुरु से पूछा कि क्या है, कोई ब्राह्मण से पूछा अपने आश्रम राज्य के, तो बोले आपने वो स्वामी जी का अपराध किया है ना, इसलिए इसका रिपेयरिंग नहीं हो सकता है, आपको उनके जाके माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फिर उसको होश में आया, फिर वो भागे उधर माफ़ी मांगने के लिए। स्वामी जी को खबर मिली कि राजा माफ़ी मांगने आ रहा है, तो उन्होंने भी तुरंत स्वागत किया उसका, उसको माफ़ किया। जैसे माफ़ किया ना, वैसे उसका महल का रिपेयरिंग हो गया, सब लकड़ियाँ ठीक होने लगी और रिपेयरिंग हो गया। तो फिर उसको मन में विचार आया कि मेरे को इतना अच्छा मौका था साधु की सेवा करने का, तो मैंने अहंकार के वश, अज्ञान के वश उनका अपमान किया। तो उन्होंने कहा, वापस गए उनके पास, वो बोले स्वामी जी अभी आप हमारे पास आए थे, आपको रुकना था रात को, हमने मना कर दिया, तो अभी आप आइए, हमारे अपने विग्रह को लेकर आइए, हमारे पास रुकिए। तो स्वामी जी ने कहा कि अभी विग्रह को मैंने स्थापन कर दिया, अभी मैं उनको लेकर नहीं आ सकता, तो अरे उनकी उत्सव मूर्ति को लेकर आना। तो फिर राजा की इच्छा से स्वामी जी ने एक दिन उत्सव मूर्ति लेकर 12 किलोमीटर का अंतर पैदल चल के उसके राज्य में गए, वहाँ पर धूमधाम से उत्सव मनाया। राजा ने पूरे मुल्की के जितने निवासी थे सबको आमंत्रण दिया और सबको वहाँ पर उन्होंने भोजन कराया, बहुत दिन तक उत्सव मनाया जोरदार। आज भी उस तिथि को उस गाँव में उत्सव होता है, सब मुल्की के लोग वहाँ जाते हैं उस गांव में, कुछ पेरेंदुरु कुछ नाम है उस गांव का, राज्य था उस समय। तो फिर हर साल ये चलता रहा सिलसिला, तो हर साल वो मूर्ति को लेकर चलते थे पैदल, तो किसी के खेत में जाते थे, किसी के जाते थे। तो एक द्वेषी व्यक्ति था, बोले क्या ये हर समय जाते यहाँ से हर साल? तो उसने ना अपने खेत पर बड़ा कांटेरी कुंपण लगाया, कांटे का फेंस लगाया, और वो फेंस लगाया तो बहुत भक्तों को कष्ट हुआ, उसमें कांटे लगे, पैर कटा, ये वो, क्योंकि रास्ता जो था ना वो खेत से था ना, खेत से, तो उसने पूरा अपना खेत घेर लिया, तो उसको फिर घूम के जाना पड़ा, ऊपर से कांटे भी लगे, इंजोर हो गए, तो उसका भी घर जल गया। तो उसको भी ध्यान में आया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर अगले साल में उसने क्या किया, रास्ते पे खड़ा हो गया, बोला कि हमारे घर पे आइए, आप हमारे घर पे आइए और उधर भी आनंद लीजिए, सेवा लीजिए। तो फिर अभी वो उधर भी रुकती है डोली भगवान की, उधर भी भगवान को भोग पूजा उत्सव होता है, और वहाँ से फिर वो आगे के गांव में जाते हैं, और वहाँ से लोग लौट के मुल्के में आते हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत बुरा बात की बात है, आज और कल की बात नहीं है। वो राजा को पश्चाताप हुआ, वो बहुत सारे बीत गए, राजा मर गया, बहुत सारे हो गया, बाद में जब रोज का ये हो गया, हर साल जाने का समय हो गया, तो कोई क्षेत्र किसान को बहुत जलन होने लगी, ये मेरे इसमें क्यों जा रहे हैं, तो उसने वो रोक लगाई, तो फिर उसका भी नुकसान हो गया। अब जो पूरा जो इलाका है ना, जो मुल्की क्षेत्र है, राजा का जगह है, वो सारा जो क्षेत्र है ना उसको मूलिका क्षेत्र कहते हैं। उसका और एक नाम है वड़ालंका, वड़ालंका बोलते हैं उसको। कारण क्या है उसका, क्योंकि जब हनुमान जी, सॉरी सबसे पहले हनुमान रावण, जब रावण ने कुबेर का जब परास्त किया, कुबेर को, कुबेर है ना, वो रावण की सौतेली माँ का पुत्र है। रावण के पिताजी को दो पत्नियाँ थीं, एक कुबेर की माता बनी और एक कुंभकर्ण रावण विभीषण शूर्पणखा की माता बनी। तो कुबेर था ना, उसको इतने अच्छे गुणी सद्गुणी थे वो कुबेर, तो देवताओं के वो खजांची बने, ट्रेजरर, और बड़ा सम्मान था उनका, उसकी वजह से उनको पुष्पक विमान मिला खजांची बनने की वजह से। और वो पुष्पक विमान कैसा था मालूम है, पुष्पक विमान में जो बैठेगा ना, जो मालिक होगा उसका, उसके मन में जो भी होगा वहाँ जाएगा विमान, बोलने की जरूरत नहीं कि लाइट में लो, हाँ पति के लिए घर में लो, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं, वो मन में आया ना वहाँ जाएगा, वहाँ पहुँच जाएगा वो। और उसमें कोई ईंधन नहीं है, पेट्रोल, हवा, कोई गैस, ऐसा ओपन है वो, उड़ता हुआ शहर है वो, उसके अंदर नदियाँ हैं, पर्वत है, महल है, पौंड है, खेलने की जगह है, चलने की जगह है, महारास्ता है, सब कुछ है उसके अंदर। और जितने लोग आएंगे उतना बढ़ता जाएगा साइज उसका, आप कितने भी करोड़ों लोगों उनको इकट्ठा करो, वो बढ़ता जाएगा और आराम से। और कैसा नहीं कि भाई विरार का ट्रेन है तो खड़े की जगह नहीं है, पसीना आ रहा है, एक पैर उसका पैर पे गिर रहा है, वो झगड़े हो रहे हैं, ऐसा इतना भीड़ है क्या करेंगे, जगह ही नहीं है, ऐसा नहीं है, सब आराम से जाएंगे, एवरीबॉडी विल गो पीसफुली। ऐसा नहीं कि बेल्ट बांध के बैठना है, ऐसा एकदम हाथ पर के बैठना है, हाथ के लिए तो धक्का लगेगा, टेक केयर बोलेगा, ऐसा नहीं, ऐसा विमान है वो। जैसे प्रभु रामचंद्र ने जब उसको जीत लिया ना, तो कहते हैं कि ऑलरेडी फुल हो गया था वो, वानर लोग ने कहा कि हमको भी आना है, तो वानर लोग भी बोले आ जाओ, भगवान बोले आ जाओ, तो वो एक्सपांड हो गया, वानर लोग चले गए। फिर वानर लोग उदास है, तो भगवान बोले अभी क्या है, बोले हमारे पत्नी को भी आना है, बोले आ जाओ, हर एक की एक पत्नी, तो सब लोग को लिया, तो और एक्सपांड हो गया वो, ऐसा भी मानता हूँ। तो वो विमान को द्वेष की वजह से, अपनी माँ के उकसाने की वजह से, रावण को इतना कुछ ध्यान नहीं था उसका, लेकिन माँ को लगता था, अरे क्या देखो कुबेर का कितना थाट है, देखो हमारे बच्चे, देखो कुबेर को, देखो कितना ऐश्वर्य है, तुम क्या करते हो, कुछ करो। तो इसका खसक गया, आक्रमण किया कुबेर के राज्य के ऊपर, कुबेर को परास्त कर दिया, उसका पुष्पक विमान छीन लिया, और उस पर बैठ के जब आ रहा था तो पहले वेदवती का अपमान किया, वेदवती तपस्या कर रही थी, उतर गया उधर, बोलते अरे इतनी सुंदरी यहाँ पर क्या कर रही हो, वो तपस्या कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हो, बोले विष्णु को प्राप्त करना है, विष्णु विष्णु छोड़ो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मेरी बन जाओ, तो बोले नहीं कर सकती हूँ मैं ऐसे, तो ज़बरदस्ती उसको स्पर्श किया उसने, तो उसने तुरंत एक मंत्र बोला और खुद भस्म हो गई वो, और भस्म होने के पहले शाप दिया उसको, कि मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी, और वही वेदवती सीधा बनकर आई। ठीक है, वो इधर उधर गड़बड़ किया उसने, थोड़ा उड़ा विमान में बैठकर आगे चला गया तो रंभा स्नान कर रही थी, अभी तो स्वर्गलोक में है वो, अभी उधर ही से आ रहा है वापस। रंभा का देख के मोहित हो गया तो रंभा पर जाके बलात्कार कर दिया उसने पूरा। तो चिल्ला रही थी वो, तो उसका पति नल कुबेर और मणिग्रीव, दो पुत्र है ना कुबेर के, कुबेर की वो थी वो डॉटर इन लॉ स्नुषा, तो कुबेर की एक लड़के की पत्नी थी वो, तो वो पुकारने लगी। तो लड़का तो बहुत डर गया, बोलता अभी मेरे पिताजी को हरा के आया है तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं तो हेल्पलेस हूँ। तो उसने उसको घर में बैठ के ही शाप दिया जनीव तोड़कर कि इसके आगे तुम किसी के मर्जी के बिना संभोग करोगे बलात्कार करोगे तो उधर ही मर जाओगे तुम। सेकेंड शाप प्राप्त हुआ, फिर बैठा विमान पर और जब जा रहा था नीचे ना तो कई बीच में अत्याचार किए उसने, लेकिन जब जा रहा था ना तो बीच में एक जगह उतर गया वो लंका समझ के, वो ये जगह है ये उतरा, उसको लगा अपने लंका आ गए। इतना वैभव था उसके अंदर, इतना सौंदर्य था, इतना ऐश्वर्य था उस जगह पर, शंभवी नदी के किनारे में राज्य था, इसमें इतना ऐश्वर्य था कि रावण भी चौंक गया, फिर समझ गया कि अरे गलत जगह पर आ गया। फिर वो उसने उसको वोड़ा लंका नाम दिया, प्रतिलंका, और फिर वहां से वो लंका चला गया। फिर हनुमान जी जब संजीवनी लेकर आ रहे थे ना लक्ष्मण जी के लिए, तो वो भी लंका समझकर उधर उतर गए थे, वो उसने देखा अरे ये तो लंका नहीं है, फिर तुरंत ऊपर गए। तो उस जगह पर हनुमान जी भी आए, रावण भी उतरा, रावण जब उतरा ना उधर, तो उसको जगह इतनी अच्छी लगी कि रावण ने वहां पर एक शिव जी को स्थापन किया, और वो शिव जी आज भी वहीं पर है जहां पर शिव जी का मंदिर बनाया गया, उसी वहीं पर वो जयन राजा का राज्य था, और वो शिवजी का मंदिर आज भी वही है, उसका नाम भी है कुछ भूल गया उसका नाम। तो उसी मंदिर में जाकर फिर ये नरसिंह भगवान की उत्सव मूर्ति पहुंचती है और वहां पर उनकी सेवा होती है, ऐसा अद्भुत है वो मूलिका क्षेत्र महात्म्य। और गर्व की बात यह है कि वो मेरी माता जी का गांव है, माई मदर इज फ्रॉम दैट विलेज, और वो इतना सुंदर विलेज है, उसमें हर दत्त पूर्णिमा को, दत्त पूर्णिमा के दिन उस नरसिंह भगवान का प्रतिष्ठापना किया गया था, इसलिए हर दत्त पूर्णिमा को हमारे पूरे साउथ कैनरा मतलब जितना गोवा से जितनी गांव है ना एंड मैंगलोर तक सारे लोग वहां पर आते हैं, और बहुत बड़ा उत्सव होता है, रथ यात्रा होती है, उत्सव होता है, रात को पटाखे आकाश में फोड़ते हैं, सब लोगों को फीस्ट होती है, हजारों लोगों को फीस्ट खिलाते हैं, सब नौजवान लोग वहाँ पर आके नारियल किसते हैं, सब्जी काटते हैं, सबके लिए भोजन बनाते हैं, रात भर जगते, सुबह 4 बजे तक फायर वर्क होता है, मैं बचपन में गया था सब देखने के लिए। तो वो प्रतिष्ठा पुन्नम, प्रतिष्ठा की पूर्णिमा, प्रतिष्ठा स्थापना की पूर्णिमा करके फेमस है वो बहुत फेमस है वो, हमारे सारे गांव के सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं। उसमें और एक कहानी है, एक कारकाड़ा नाम की एक जगह है, वहाँ पर भी हम लोग गए थे यात्रा में, कारकाड़ा, कारकाड़ा में ना वेंकट रमणा की मूर्ति है, विष्णु भगवान वेंकट रमणा, तो जैन लाल राजाओं ने कारकाड़ा पर हमला किया, तभी खबर मिली कि जैन लोग आ रहे, तो तभी हमारे जो कास्ट के ब्राह्मण थे ना उनको भगवान ने स्वप्न दिया कि मेरे को लेकर जाओ मुल्की में, वहाँ पर मुझे छुपाओ, तो ये भागे और मुल्की में आए, आज के तारीख में करीब 50 किलोमीटर अंतर होगा, भाग भाग के गए और वहाँ पर वेंकट रमण की मूर्ति है ना वो डाल दिया कुएं में बचाने के लिए, और उसी गांव में रह गए हमारे गांव में। कुछ समय के बाद में युद्ध समाप्त हो गया, फिर वो लोग कुएं में गए मूर्ति निकालने के लिए, उनको मूर्ति नहीं मिली, उन्होंने बहुत ढूंढा, एक्सपर्ट लोगों को भेजा पानी के अंदर, किधर भी मूर्ति नहीं मिली, तो निराश हो गए वो, चले गए कारकाड़ा वापस। कारकाड़ा वापस पहुंच गए तो मुल्की के लोगों ने ढूंढा तो उनको मिला, तो खबर मिल गई कि मुल्की के लोगों को मिला वो मूर्ति, तो वापस आ गए वो, तो मुल्की के लोगों ने मिला आपको नहीं मिला हमको मिला अभी हमारी है, ऐसे करके उन्होंने अपने नरसिंह भगवान के मंदिर में उनको लग दिया। तो कारकाड़ा के लोग नाराज हो गए बहुत, अरे हमारे विग्रह आपने लिए वो देते नहीं हो, तो भगवान वेंकट रमण ने उनको स्वप्न दिया, उन्होंने कहा कि अभी मैं यहीं रहूंगा, तुम लोग कारकाड़ा चले जाओ, तुम कल जहाँ जब पहुंचोगे ना कारकाड़ा में तो एक ब्राह्मण आएगा और मेरी दूसरी मूर्ति आपको भेंट में देगा, उसको वर्शिप करो आप। जैसे कारकाड़ा पहुंचे, सो गए, अगली मॉर्निंग जब उठे तो एक ब्राह्मण आया और उन्होंने वेंकट रमण का मूर्ति उनको प्रेजेंट दिया और वो आज कारकाड़ा मंदिर में विराजमान है। और तीसरी मूर्ति जो है बिंदु माधव, वो मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं थी। नरसिंह भगवान भी बाहर से आए, वेंकट रमण भी बाहर से आए और बिंदु माधव भी बाहर से आए। ऐसे ही उधर वाराणसी में बिंदु माधव की मूर्ति थी, तो वहां से मूर्ति यात्रा करते करते मुल्क आ गई बिंदु माधव। वो उसमें भी बहुत लीला है, भगवान के स्वप्न दिया भगवान ने, फिर वो मूर्ति यात्रा करते करते मुल्क आ गई। वो थर्ड स्टेज पे है, बीच में नरसिंह भगवान है, ऊपर वेंकट रमण है और नीचे, और नरसिंह भगवान की शालिग्राम शिला है। हमारे हर मंदिर में गांव में शालिग्राम शिला होती है, जिस भगवान है उसकी शालिग्राम शिला होती है। उसमें उडुपी कृष्ण के विग्रह भी है, उसमें व्यासदेव की मूर्ति भी है, उसमें पांडुरंग की मूर्ति भी है, क्योंकि हमारे गांव में भी कानडाऊ विठ्ठला करके बहुत महत्व है उसका। कानडाऊ विठ्ठलू बहुत मानते हैं विठ्ठल को, भगवान को। हमारे कन्नड़ में कितने कानड़ा विठ्ठल के ऊपर भजन है, और हमारे गांव से बहुत लोग वहां पहुंचते हैं पंढरपुर में, बहुत श्रद्धा है उनको विठ्ठल के ऊपर। तो विठ्ठल भगवान की मूर्ति भी है, उडुपी कृष्ण की मूर्ति भी है, व्यासदेव हमारे संप्रदाय के बड़े आचार्य हैं, मतलब हमारे संप्रदाय के भी है, लेकिन हमारे काश में व्यासदेव जी का व्यासाश्रम है हरिद्वार में। अभी मैं गया था ना उत्तरकाशी, तो वहाँ जाके आया मैं। व्यासदेव जी का एक मंदिर है, और व्यासदेव जी के जो शिष्य थे ना, आठ प्रथम मुख्य शिष्य थे, चार शिष्य, चारों को चार वेद सौंप दिए उन्होंने, वो मंदिर है उधर। बीच में व्यासदेव की मूर्ति है और चार दिशा में चार मुनि को चार कौन से वेद दिए हैं, उस वेद के साथ में उनकी मूर्ति भी है। बड़ा भव्य मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। और एक स्वयंभू शिव जी का लिंग है गंगा जी के किनारे हरिद्वार में, व्यास आश्रम ऐसा है। और पूछो, क्या पूछना है?